हाय, सो आवर चैप्टर टू इज़ इंडिया इन द 18th सेंचुरी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर हमने मेडिवल इंडिया की बुक में पढ़ा था कि अब जो है औरंगज़ेब के सक्सेसर्स के बाद, औरंगज़ेब के डेथ के बाद मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. और लेकिन एक टाइम पे जो मुगल एम्पायर था, इट वॉज़ एबल टू यूनाइट द एंटायर कंट्री. और जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, दैट वॉज़ वेरी एफिशिएंट एट दिस टाइम, एट हिज टाइम, एंड ही वॉज़ एबल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स एंड इन एक्सपेंडिंग इट. और यू माइट बी अवेयर अबाउट द प्रोग्रेस मेड इन दिस पीरियड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन म्यूजिक एंड लिटरेचर ऑल्सो. इट वॉज़ अ वेरी रिच पीरियड. अब हम जब हम देखते हैं औरंगज़ेब के टाइम पे, द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स, देयर वर रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर. रिवॉल्ट्स हैज एक्चुअली स्टार्टेड ड्यूरिंग औरंगज़ेब के ही टाइम पे. रिवॉल्ट स्टार्ट हो गई थी. देयर वर रिवॉल्ट्स ऑफ द मराठास, सिक्स, जाट्स और बहुत सारे जो हैं लोग जो दूर दूर के प्रोविंसेस में थे, दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द मुगल एम्पायर. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, वी नो दैट द मुगल एम्पायर बिगिन टू डिसइंटीग्रेट वेरी फास्ट. कंट्री सून ब्रोक अप इनटू स्मॉल टेरिटरीज, और उसमें से बहुत सारी जो है मोर और लेस इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी. दिस इज़ व्हाट हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब. अब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब जो रेन है वो लेटर मुगल्स की स्टार्ट हुई. और द मुगल एम्परर जो थे, हु केम टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, दे वर कॉल्ड द लेटर मुगल्स. And they formed themselves into many factions, usually on the basis of their common origin. For example, अगर हम बात करें जो नोबल्स इंडिया आए थे ट्रांसऑक्सियाना इन सेंट्रल एशिया से, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया और उनको कहा जाता था तुरानीस. और भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे, ईरानीस के ग्रुप थे, अफगान्स के ग्रुप थे, हिंदुस्तानी नोबल्स के ग्रुप थे. और ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो अपना अपना रूल और अपनी सुप्रीमेसी और अपना पावर बढ़ाने के चक्कर में थे हमेशा से. एंड हमने पढ़ा था कि पहले भी औरंगज़ेब का जब रेन ख़त्म हुआ, बहुत सारे मनसबदार जो थे एम्पायर में वो बढ़ गए थे. जो रेवेन्यू था वो डिक्लाइन हो चुका था और मनसबदार्स के पास बहुत सारी लैंड थी एंड दे वर नॉट पेइंग द प्रॉपर टैक्सेस दे कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड. और जितने भी मनसबदार थे ये डिमांड करते जा रहे थे, मोर एंड मोर जागीर्स वर डिमांडेड बाय देम, जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता. लेकिन दे वर गेटिंग प्रॉफिट्स, बट द एम्पायर ऑन द होल वॉज नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट एज सच, बिकॉज दे वर नॉट पेइंग मच टू द एम्परर. जो मनसबदार्स थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, मनसबदार्स जो हैं उन्होंने ट्रांसफ़र्स को भी रिजिस्ट किया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. अकबर की ये पॉलिसी थी कि वो किसी भी जो नोबल है उसको एक पोस्ट पे ज़्यादा देर तक नहीं रहने देता था, बिकॉज ही यूज़ टू फील दैट अगर कोई भी जो एम्प्लॉय है या मनसबदार है या जागीरदार है, अगर उसको ज़्यादा देर तक एक पोस्ट मिली रहे, तो ही विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सुप्रीम पावर. बट नाउ जब हम लेटर मुगल्स की बात करते हैं, दीज लेटर मुगल्स दे स्टार्टेड रिजेक्टिंग कि हमको ट्रांसफ़र नहीं करवानी है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है. तो देयर जागीर्स बिकेम परमानेंट एंड हेरिडेटरी भी होने लग गई जागीरदारी सिस्टम. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था जागीर्स का वॉज इन द हैंड ऑफ वजीर. और जो ग्रुप्स था नोबल्स का, इसलिए वो जो ग्रुप्स होते थे वो लड़ते रहते थे एक दूसरे से, ताकि जो ऑफिस है वजीर का वो उनको मिल सके, जो वो अपने रिलेटिव्स और अपने फॉलोअर्स के इंटरेस्ट में उनको जागीर्स बांट सके. और ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ औरंगज़ेब की डेथ के बाद, इसमें बहादुर शाह जो है ही वॉज विक्टोरियस. एंड उसकी बहुत छोटे टाइम तक रूल किया बहादुर शाह ने. ही रेन फ्रॉम 1707 टू 1712. और बहादुर शाह ने मुगल एम्पायर को रिस्टोर करने की कोशिश की. उसने मराठास के साथ कंसिलिएशन करने की कोशिश की, उसने राजपूत को मनाने की कोशिश की, एंड उसने शाहू को भी छोड़ दिया, जो ग्रैंड सन था शिवाजी का, उसको रिलीज़ कर दिया, जिसको कि इम्प्रिजन किया था औरंगज़ेब ने. जो जहांदर शाह है वो आता है उसके बाद, बहादुर शाह के बाद 1712 में. ही केम टू द थ्रोन एंड विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान, हु वाज औरंगज़ेब सीनियर मोस्ट जनरल. सो ये जो थ्रोन पे बैठा था जहांदर शाह, ये भी खुद से नहीं बैठा था, ही वाज हेल्प बाय जुल्फिकार खान. एंड जजिया जो है वो एबॉलिश हो गया इस टाइम पे, किसके रेन के टाइम पे, जहांदर शाह ने जजिया फिर से अबॉलिश कर दिया जो कि औरंगज़ेब ने फिर से लगा दिया था। तो जहांदर शाह जो है वो उसको ओवरथ्रो कर दिया गया 1 साल के बाद ही, जब वो थ्रोन पे बैठा, और उसकी जगह बिठाया जाता है थ्रोन पे फारूक सियार को, जो कि एम्परर बना 1713 में। और जो मोस्ट पावरफुल नोबल्स थे इस टाइम पे वो थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जिनको पॉपुलरली कहा जाता था सैयद ब्रदर्स। व्हेन जब ये एम्परर ट्राई टू सप्रेस देयर पावर, जब एम्परर ने ये कोशिश की कि इनकी पावर को सप्रेस किया जाए, ये दो जो ब्रदर्स हैं हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, तो ही वॉज़ पुट टू डेथ इन 1719। तो फारूक सियार को पहले तो उन्होंने हेल्प की राजा बनने के लिए, लेकिन जब फारूक सियार को समझ में आया कि ये तो उसकी भी नहीं सुन रहे हैं, तो उसी के खिलाफ कॉन्स्पिरसी करके इन्होंने फारूक सियार को मरवा दिया। और जो सैयद्स थे उनको ये दे सैयद्स रेज टू द थ्रोन सक्सेसिवली टू कजन्स ऑफ फारूक सियार। उसके बाद ये जो सैयद ब्रदर्स थे इन्होंने दो कजन्स जो हैं बैक टू बैक उनको राजा बनाया, जो कि फारूक सियार के ही कजन्स थे, एंड दैट वाज मोहम्मद शाह जो एम्परर बना 1720 में। लेकिन जल्दी ही जो सैयद ब्रदर्स हैं उनको ओवरथ्रो कर दिया अनदर ग्रुप ऑफ नोबल्स ने, दैट वाज लेड बाय चिन कुलिच खान हु हैड बीन फेमस जनरल ऑफ औरंगज़ेब। तो जो ये सैयद ब्रदर्स का ग्रुप है इनको भी ओवरथ्रो कर दिया गया, क्योंकि नोबल्स में भी आपस में फाइट होती रहती थी सुप्रीमेसी और पावर के लिए। एक टाइम के लिए सैयद ब्रदर्स बहुत पॉपुलर थे, लेकिन देन देर व्हेन पीक कम्स देर इज़ अ डिक्लाइन ऑल्सो विच फॉलोज। सो द सेम हैपेंड विद सैयद ब्रदर्स, एंड दे वर ओवरथ्रोन बाई ग्रुप ऑफ नोबल्स, एंड दैट ग्रुप वॉज लेड बाय चिन कुलिच खान। उसके बाद हम देखेंगे ये जो चिन कुलिच खान था वो फेमस जनरल था औरंगज़ेब के टाइम पे। मोहम्मद शाह का जो रेन है वो 29 ईयर्स तक चला, एंड 1748 तक मोहम्मद शाह ने रूल किया। लेकिन जो एम्पायर है वो ऑलरेडी टूटना शुरू हो गया था, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमें दिखेंगे डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स के बीच में, जिससे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी बहुत वीक हो गई थी। जो रियल पावर थी दैट वाज अब्सर्ड बाय द नोबल्स, जो कि अपनी सेटिंग में लगे रहते थे कि उनको अथॉरिटी कैसे मिलेगी। सो ऑल्दो दे कंटिन्यू टू पे फॉर्मल एलिजेंस टू द एम्परर, दे टॉस्ड हिम लाइक अ शटल कॉक टू सूट देयर कन्वीनियंस। सो नोबल्स ने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे इस टाइम पे, कि इवन इफ दे वर पेइंग ओबिडियंस एंड एवरीथिंग टू द किंग, लेकिन वो एक शटल कॉक की तरह ट्रीट करते थे, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किंग को ट्रीट करते थे। इसीलिए जो बहुत सारे प्रोविंसेस थे उस टाइम पे दे स्टार्टेड सेपरेटिंग फ्रॉम द एम्पायर, कुछ इंडिपेंडेंट हो गए कुछ सेमी इंडिपेंडेंट हो गए, स्पेशली बंगाल, अवध, हैदराबाद, रोहिलखंड, यहाँ के एम्पायर्स। और 1739 में मुगल आर्मीज जो है उनको नादिर शाह ने मुगल आर्मीज को भगा दिया करनाल से 1739 में, और बहुत सारा मसैकर हुआ दिल्ली में, प्लंडर हुआ जो कि नादिर शाह ने कंडक्ट कराई थी रेड्स। नादिर शाह की इन्वेजन के बाद हम देखते हैं कि जो एम्पायर है वो बहुत बुरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हुआ, जो मुग़ल एम्पायर की ग्लोरी थी इट केम टू एन एंड। एंड मोहम्मद शाह का जो सक्सेसर था दैट वाज अहमद शाह, उसके बाद आया आलमगीर टू, एंड देन उसके बाद आता है शाह आलम टू। ये जो है ये दे वर ओनली एम्परर्स फॉर नेम। इन द मीन टाइम हम देखेंगे कि मराठाज जो हैं दे वर इमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट पावर इन द कंट्री, एंड दे वर बिकमिंग पावरफुल। हम सबसे पहले बंगाल देखेंगे कि बंगाल में क्या हो रहा था। जो मुर्शिद कुली खान था वो दीवान था बंगाल का औरंगज़ेब के टाइम पे, और फारूक सियार ने जो है गवर्नर बना दिया मुर्शिद कुली खान को बंगाल का, जो कि पहले दीवान था बंगाल का। और थोड़े से ही टाइम में वो एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गया बंगाल का, एंड उसने अपनी कैपिटल जो है वो सेंट्रल बंगाल के एक टाउन में शिफ्ट कर दी, जिसका नाम उसने रखा मुर्शिदाबाद। और मुर्शिद कुली खान के जो सक्सेसर नवाब्स थे उन्होंने बंगाल को देखा, बिहार को एंड उड़ीसा को भी एज इंडिपेंडेंट रूलर्स उन्होंने वहाँ पर रूल किया। एंड ये मुग़ल एम्परर को रेवेन्यू भेजते थे रेगुलरली, लेकिन दे स्टार्टेड देयर इंडिपेंडेंट रूल एज वेल। एंड यहाँ पे जो हम बंगाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई, ट्रेड की ग्रोथ हुई और इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है मुर्शिद कुली खान के अंडर, और रेवेन्यू जो था वो प्रॉपरली कलेक्ट होता था रेगुलरली विद स्ट्रिक्टनेस, और लोन्स वर गिवन टू द पुअर कल्टिवेटर्स, बट जो रेवेन्यू डिमांड था वो वॉज नॉट डिक्रीज, सो रेवेन्यू डिमांड वॉज द सेम एंड इट वॉज इंक्रीजिंग. लेकिन जो रेवेन्यू प्रोविंसेस के जो रेवेन्यू के सोर्सेस थे दे वर ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट जो पीजेंस थे दे वर नॉट बेनिफिटेड एट ऑल, जो कि हर सोसाइटी में पीजेंस के साथ होता है. उसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद की. बंगाल में थे मुर्शिद कुली खान, उसके बाद हम आते हैं हैदराबाद में. तो हैदराबाद में थे चिरंगुलिच खान, एंड उन्होंने जो है उनको टाइटल मिला था निज़ामुल मुल्क का, एंड हैड बीन मेड द गवर्नर ऑफ हैदराबाद. उसके बाद वो डेक्कन चले जाते हैं एंड अपनी जो है उस रीजन पे होल्ड कंसोलिडेट करते हैं. इनिशियली वो भी मुगल एम्पायर का एक पार्ट थे, लेकिन लेटर ऑन ही मार्च टुवर्ड्स द डेक्कन. लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने डेक्कन को एज एन इंडिपेंडेंट रूलर रूल किया, और उनके जो सक्सेसर्स थे उनको निज़ाम ऑफ हैदराबाद कहा जाता है. ये चिरंगुलिच खान की बात हो रही है. उसके बाद आता है अवध, जो सदत खान था, एक जूनियर मुगल ऑफिसर था जिसने हेल्प किया था ओवरथ्रो करने में सैयद ब्रदर्स को, जिन्होंने बहुत सारे किंग्स को बनाया और बिगाड़ा. सो ये सदत खान एक जूनियर था जो सैयद ब्रदर्स को हटाने में जिसने हेल्प की थी एम्परर की, और ये जो है गवर्नर था अवध का 1722 में. ही वॉज सक्सेडेड बाय सन इन लॉ जिसका नाम था सफदरजंग, एंड ये वज़ीर भी रहा है एम्पायर का कुछ साल के लिए. जो रूलर्स थे अवध के उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की लॉलेसनेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की कोशिश की, एंड एक पीसफुल रेन दे ट्राई टू एस्टेब्लिश पीस एंड जस्टिस इन देयर प्रोविंस. और उनके पास एक पावरफुल आर्मी भी थी विच कम्पोज ऑफ मुस्लिम्स और हिंदूज के साथ में नागा सन्यासीज भी थे उनकी आर्मी में. और जो अथॉरिटी थी अवध रूलर्स की इट एक्सटेंडेड अप टू रोहिलखंड, जो कि ईस्ट ऑफ दिल्ली की एक टेरिटरी है, और काफ़ी सारे अफगान्स जो थे माउंटेन रेंजेस से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, देवर कॉल्ड रोहिलास, ये यहाँ पे सेटल्ड थे रोहिलखंड में. और रोहिला चीफ्स जो हैं देवर ट्राइंग टू काव आउट इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज ऑफ देयर ओन इन द एरिया. दिस वॉज अबाउट अवध. अगर हम पंजाब की बात करें तो नॉर्थ ऑफ दिल्ली जो टेरिटरीज थी लाहौर की और मुल्तान की, देवर रूल्ड बाय मुगल गवर्नर. लेकिन जब नादिर शाह ने लूट के पर्पज़ से वो आया, और उसके बाद में अहमद शाह फिर से आया लूटने के लिए इन्वेजन, तो उनकी पावर जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी. एंड लेटर ऑन सिख्स जो है दे स्टार्टेड इमर्जिंग एज अ सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन द पंजाब एरिया. और अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करते हैं कि जितने भी ऑफिसर्स थे मुगल एम्पायर के, धीरे 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 वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना रहे थे. और काफ़ी सारी ऐसी स्टेट्स भी थी जो इनिशियली मुगल एम्पायर का पार्ट थी, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद दे स्टार्टेड सेपरेटिंग एंड दे ट्राई टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस. अब हम राजपूत की बात करते हैं. जो राजपूत चीफ्स थे अकबर के टाइम से ही वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे मुगल एम्पायर का, और काफ़ी सारे राजपूत ऐसे थे वो औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जिन्होंने वॉर भी की है, रिवॉल्ट भी किया है, जब औरंगज़ेब ने कोशिश की थी टू इंटरफेयर विद द प्रिविलेज ऑफ इनहेरिटिंग देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स. और जब डेथ हो जाती है औरंगज़ेब की, दे ट्राइड टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर. दे ऑल्सो ट्राइड टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस. जो रूलर्स थे जोधपुर के और अम्बेर के, वर मेड द मुगल गवर्नर्स ऑफ